मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 17 नवंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोनों साथियों के नाम हैं सिकंदर कुमार जो दिल्ली से हैं और निखिलेश कुमार शुक्ला जो इलाहाबाद से हैं। तो सिकंदर, निखिलेश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी आने में ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सोच कर देखिए कि हम सब अगर अपनी जिंदगियों के बारे में भी सोचें तो जो हमारी उम्र हो गई है उस उम्र में 365 का गुणा कर दें, उतने दिन हमने अपने जिंदगी के गुजार दिए हैं। उनमें से बहुत सी बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे कि कल की ही बातें हों और ढेर सारी बातें हम भूल भी चुके होते हैं। तो मित्रों, दिन इसी तरह से गुजरते जाते हैं, गुजरते ही जाएंगे और कब फरवरी आकर 15 दिन की क्लासेस होंगी और खत्म हो जाएंगी वो क्लासेस भी शायद आपको एहसास नहीं होगा। हां, लेकिन जो समय के महत्व को समझते हुए मित्रों इन गुजरते हुए पलों को पकड़ लेते हैं, सच पूछिए तो वे ही लोग अपनी जिंदगी पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। तो मित्रों, इस स्वागत के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि कल के अपने डेली ऑडियो के इसी पार्ट के अंतर्गत मैंने अपने क्लास के एक स्टूडेंट जिनका नाम संजीव कुमार था उनके मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से वो यहां क्लास में थे, अचानक उनके पिता के बहुत ज्यादा सीरियस होने की खबर मिली। मतलब ऑलमोस्ट ये था कि अब उनके पिता नहीं ही रहे हैं। वो स्टूडेंट अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए और इसके बाद फिर से क्लास अटेंड करने के लिए वापस आकर के हम सबको सच पूछे तो उन्होंने चमत्कृत कर दिया और यह उनके सिविल सर्विस का लास्ट अटेम्प्ट था। प्री क्वालिफाई कर चुके थे वो और मेंस के एग्जाम 18 दिसंबर को ही अभी होने थे। आप सोच कर देखिए कि उन्हें कितना अधिक आंतरिक संतुलन अपने अंदर कायम रखना होगा। फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत विचित्र है, धूप है तो कभी छांव है। आपको इसी क्रम की मैं एक दूसरी घटना सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल इसी के क्रम की है। मित्रों, क्लास खत्म होने के बाद ये जो घटना है जो मैंने कल आप लोगों से शेयर की थी, ये क्लास शुरू होने से पहले की घटना थी। डेढ़ घंटे, लगभग पौने दो घंटे की क्लास चली और जैसे ही वो क्लास खत्म हुई, जनरली होता है कि क्लास खत्म होने के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत फ्रीली मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूं। वो बड़ा बड़ा अद्भुत अनुभव वाला वो वक्त होता है। तो ठीक वैसे ही क्लास खत्म होने के बाद फिर स्टूडेंट्स मेरे पास आने लगे। उसी में एक स्टूडेंट मेरे पास आए, शायद राजस्थान से थे। उन्होंने कहा कि सर, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हालांकि उनकी भी ये बहादुरी थी कि उनकी पत्नी इस स्थिति में थी और वो अपनी पत्नी को उस स्थिति में छोड़ करके और यहां क्लास अटेंड करने आए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी उस मानसिक मजबूती का एक प्रमाण प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने, मैंने उनको बधाई दी, फिर उन्होंने एक अनुमति चाही कि सर, ये चूंकि खुशी का मौका है, अगर आप अनुमति दें तो मैं सभी स्टूडेंट्स का मुंह मीठा कराना चाहूंगा। मैं कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल अनुमति है। और मित्रों, फिर मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया कि जाकर के जो भी खरीदना चाहते हैं मीठा अच्छे होटल से ठीक ठाक रेट पर उनको दिलवा करके ले आए। और मित्रों, लंच के बाद, ये लंच से ठीक पहले की बात है, और लंच के बाद उन्होंने सभी का मुंह मीठा कराया। मित्रों, जैसे ही सच पूछिए तो ये बात सामने आई तो दिमाग में एक अद्भुत बात कौन थी। उस समय शादाब कुरैसी मेरे साथ कंप्यूटर पर मेरी मदद कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि सर देखिए, कुछ ही देर पहले इसी स्टेज से हमने किसी के मृत्यु की घोषणा करते हुए उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और एक डेढ़ घंटे के बाद अब इसी मंच से अब यह घोषणा हो रही है कि एक नया जीवन इस धरती पर आया है। मैं खुद भी यह बात सोच रहा था, लेकिन शादाब ने इसे आवाज दी, इसकी अभिव्यक्ति की, मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए मेरा एक स्टूडेंट इसी जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु के इस खेल को इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहा है। मैंने फिर उनका रेफरेंस देते हुए इस बात की घोषणा की कि मित्रों देखिए, कुछ समय पहले एक ही दिन के एक ही समय में हमने यहां से एक जीवन के विदा होने की घोषणा की, और इसी मंच से अब हम एक जीवन के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। क्लास सुनते ही भौचक थी। मित्रों, कुल मिलाकर यही जीवन है। यदि हम अपने जीवन को ही इस धरती का जीवन मान लेते हैं, सबका जीवन मान लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे खत्म होते ही जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को विस्तार देकर, अपनी सोच को फैलाकर, जब हम ये महसूस करते हैं कि नहीं, जीवन बहुत विराट है, बहुत विशाल है, हम तो उस जीवन के एक छोटे से हिस्से हैं, हम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जीवन हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक के पिता गए और दूसरा एक बच्चा आकर के एक को उसने पिता बना दिया, तो जीवन का क्रम निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है। मुझे लगता है दोस्तों कि जो जीवन की सच्चाई को समझ लेता है, समझ ही नहीं लेता बल्कि आत्मसात करके उसे जीने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती है। ताकत इस मायने की कि जो मृत्यु है यदि वो सत्य है, और जो सत्य है तो फिर उसका भय कैसा। यक्ष प्रश्न यही है। महाभारत में युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने यही प्रश्न किया था कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्य घटना मुझे यह लगती है कि व्यक्ति रोजाना अपने सामने दूसरों के मृत्यु को देखता है, लेकिन वह सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और जब ठीक इसके पलट वो ये सोचने लगे कि हम भी उसी क्यू में खड़े हैं, केवल हम अपनी बारी आने का इंतजार भर कर रहे हैं, तो दोस्तों इस सच्चाई का ज्ञान होते ही सच पूछिए तो हमारे अंदर एक इतनी बड़ी ताकत पैदा हो जाती है, इतनी बड़ी ताकत पैदा हो जाती है जिसके लिए सच पूछिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं यही कह सकता हूं कि कमाल की ताकत पैदा हो जाती है। जब आप मृत्यु के भय से उबर जाते हैं तो मान करके चलिए कि फिर किसी भी बात का भय आपके अंदर रह ही नहीं जाता। और दोस्तों जिस दिन आप निर्भय होते हैं, अभय हो जाते हैं, उसी दिन आप महावीर बन जाते हैं। यानी कि जिसने अपने भय को जीत लिया उससे बड़ा वीर शायद फिर इस धरती पर कोई नहीं रह जाता। मित्रों तब हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि हम अपने जीवन में बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, बड़े से बड़े काम को करने के लिए आगे आते हैं, और जब कामों को करने के लिए आगे आते हैं तो हम अपने कामों को अंजाम भी दे लेते हैं। मित्रों जो मैं मृत्यु के भय को जीतने की बात कर रहा हूं वो इस तरह से जीतने की बात नहीं कह रहा हूं जो आप आत्मघाती हमलों को के अनुसार देख रहे हैं। उन लोगों ने भी एक तरीके से भय को जीत लिया है, चाहे उसका आधार कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम उनकी तारीफ प्रशंसा में कसीदे इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो बहुत कमजोर है, घटिया है, कायराना है। सच पूछे तो दूसरों को मार कर और अपने को मार लेना यह कोई तारीफ की बात नहीं है, यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है, सही मायने में कोई निर्भयता भी नहीं है या अभयता भी नहीं है, यह कोई निडरता भी नहीं है, ये तो एक आतंक पैदा कर रहे हैं आप। मैं अगर भय रहित हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों को भयभीत करूं। सच्चा भय रहित तो वह होता है जो दूसरों को भी भय रहित करता है, दूसरों को भी बताता है कि भय करने का कोई कारण नहीं है। और फ्रेंड्स, आपने आज के अखबारों में यह खबर पढ़ी कि हमारे राष्ट्रपति जी ने यह कहते हुए कि जो पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं वो व्यक्ति की अपनी योग्यता के कारण दिए जाते हैं, इसीलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसी बात भी कही कि हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर तर्क का नियंत्रण रखना चाहिए। आप लोगों को ध्यान होगा कि लगातार मैं इस बात को आप सब युवाओं के सामने दोहराने की कोशिश करता रहता हूं कि प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो याद रखिए कि भावनाएं आपको अपने नियंत्रण में ले लेंगी, और जिस वक्त भावनाएं आपको नियंत्रण में ले लेंगी, याद रखिए कि फिर आप एक उस यात्री की तरह हो जाएंगे, पैदल चलने वाले यात्री की तरह हो जाएंगे जो दलदल में चलने की कोशिश कर रहा है। कितनी यात्रा हो पाएगी, कब तक हो पाएगी, कहां तक हो पाएगी, बहुत स्पष्ट है। लंबी यात्राएं भावनाओं के सहारे नहीं की जाती। मित्रों, जब मैं ये बात कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भावनाओं को अस्वीकार करता हूं। भावनाएं बहुत बड़ी नियामत हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो हमारी मदद करती हों, हमारे तर्क को जीरो न बना देती हूं। जहां भी भावनाओं और तर्क का संतुलन हो जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी बहुत छोटी नजर आती हैं, और सच पूछे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं के भी समाधान दिखाई पड़ने लगते हैं। समाधान तो केवल तभी आंखों के सामने से गायब होते हैं जब हमारे आंखें भावनाओं की आंसुओं से डबडबा जाती हैं। दृश्य बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है, लेकिन चूंकि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, इसीलिए सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चीजें झिलमिलाने लगती हैं, हम अनुमानों पर आधारित हो जाते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद यह होगा, और जहां बात शायद पर आती है, डेफिनेटली फिर हमारे निर्णय गलत होंगे। और मित्रों, जब निर्णय ही गलत होंगे तो फिर उसके समाधान के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो सही कैसे हो सकते हैं। तो मित्रों, फिर से मैंने एक छोटी सी घटना का आपके सामने जिक्र किया है। बहुत ही सच पूछे तो उस दिन का माहौल क्लास का बड़ा विचित्र सा था, कहां श्रद्धांजलि और फिर कहां बिल्कुल एक साथ उत्साह कि एक नए सदस्य की इस धरती पर आगमन का स्वागत, एक को विदाई, दूसरे का स्वागत। मित्रों, जीवन में यही चलता रहता है। आप सब बड़े काम में लगे हुए हैं, अपने जीवन को एक स्वरूप देना चाह रहे हैं, अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं। याद रखिए कि इसमें असफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी, इसीलिए किसी भी असफलता को आप अपने प्रयास का अंत न माने, ठीक उसी तरह से जैसे किसी की भी मृत्यु जीवन का अंत नहीं हुआ करती। एक असफलता पता नहीं कितनी सफलताओं का कारण बन सकती है, हम नहीं जानते, लेकिन यदि हम लगे रहते हैं तो वह बात प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देने लगती है कि हां, यह सफलता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी असफलता का हाथ रहा है। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो AIR न्यूज का स्टेज है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप सब जो मेरे इस डेली ऑडियो गाइडेंस को सुनते हैं, नाम तो इसका डेली ऑडियो गाइडेंस है, लेकिन इसमें से डेली शब्द का जो निर्वाह किया जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने उसका निर्वाह करते हैं। और यदि आप मेरे डेली ऑडियो का निर्वाह करेंगे तो डेफिनेटली आप डेली न्यूज का भी निर्वाह कर रहे होंगे। मित्रों, एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो ये कि प्लीज आप डेली न्यूज और डेली ऑडियो को मिस ना करें। यदि आपको डेली ऑडियो उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक बार मिस कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है, लेकिन डेली रेडियो न्यूज को तो आप बिल्कुल ही मिस ना करें। पता नहीं जिस दिन आप न्यूज नहीं सुनेंगे उस दिन ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी पूरे के पूरे उस क्रम से अलग हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी, जो पता लगा आगे चल करके जिसने पूरी कड़ियों को कमजोर कर दिया है। इसलिए मित्रों, जीवन में हमें कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है, और वो डिसिप्लिन आपको भी लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब डेली न्यूज सुन ही रहे होंगे, और कल के न्यूज में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें एक तो G20 जो सम्मेलन जो टर्की के अंटारिया में चल रहा है, वो उसके बारे में हम लोग कल भी बातें कर चुके हैं, आज उसके बारे में हम कुछ बातें और करेंगे जो रेडियो पर बेस्ड हैं। और जो दूसरी खबर थी, खासकर पेरिस पर जो आतंकवादी हमला हुआ है ISIS का, उसको लेकर के। और सच पूछिए तो ये जो G20 सम्मेलन जो किसी दूसरे मुद्दों पर होना था, उसी के ठीक कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले पेरिस पर जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, उसने एक तरह से G20 के एजेंडे में ही इतना जबरदस्त परिवर्तन कर दिया है कि विश्व आतंकवाद बिल्कुल उसके टॉप पर आ गया है। इसीलिए जब हम G20 के बारे में बात करते हैं या फिर पेरिस में पर होने वाले आतंकवादी हमले की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, G20 सम्मेलन में जो भारत ने अपना पक्ष रखा है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी मित्रों उसके पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी टर्की सम्मेलन से भाग लेकर के देश वापस आ चुके हैं। अब जो टर्की में जो सम्मेलन हुआ है, अब उसके क्या आउटकम्स होंगे, उसकी क्या एनालिसिस होंगी, क्या और होना चाहिए था, इसके ऊपर अब हमारे आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, तब हम उन पर विस्तार से बातें करेंगे। इसलिए अभी उन पर एक कयास लगाना, एक अनुमान लगाना कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। लेकिन यहां मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जो भारत ने स्टैंड लिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां बात कही है, मुझे लगता है कि दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। भारत तो शुरू से ही विश्व आतंकवाद के विरोध में खड़ा था और वो बातें भी रखी गई, लेकिन खासकर सिविल सर्विस के पॉइंट से मैं दो बातें विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा और आपका ध्यान भी इधर आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात थी कि भारत का ये मानना है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है, जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है व्यापार का, ट्रेड का, उसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए। भारत शुरू से ये मानता रहा है कि जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जिसे हम WTO कहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, या वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं, ये सब हो, और यहां तक कि चाहे UNO ही क्यों ना हो, UNO के सिक्योरिटी काउंसिल, भारत ये मानता रहा है कि इसमें समानता का सिद्धांत उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज्यादातर इस तरह की जो वैश्विक संस्थाएं थी वो अस्तित्व में आई, और बट नेचुरल है कि उस समय पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये जो ग्रुप था ये विजयी हुआ था, तो बट नेचुरल है कि उन विश्व संस्थाओं पर इनका सबसे बड़ा अधिकार रहा, और इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी बन गए, जिसको वीटो पावर मिल गया। और इसके बाद फिर चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी थी, तो वर्ल्ड बैंक और IMF इस तरह के जो एक आर्थिक संस्थाएं थी, उसमें चूंकि बहुत ज्यादा पूंजी अमेरिका ने लगाई, तो उस पर भी उसका दबदबा कायम हो गया। भारत लगातार एक लोकतांत्रिक प्रणाली की मांग करता रहा है, और उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की मांग को भारत ने G20 के शिखर सम्मेलन में भी दोहराया है, उठाया है। उसने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है वो भेदभाव रहित होनी चाहिए, समानता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। सच पूछिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, जो हम अपने देश के बारे में सोचते हैं वही हम एक महादेश, या कह लीजिए कि दुनिया को अगर हम एक बड़ा देश मान लें, जो आर्थिक उदारीकरण ने काफी कुछ बना भी दिया है, तो उसके बारे में भी भारत सोचता है। तो पहली बात भारत ने यह कही है, तो मुझे लगता है कि यह सिविल सर्विस का एक प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात जो भारत ने कही, उसकी पृष्ठभूमि मालूम नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले, G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ब्रिक्स के 5 लीडर्स ने आपस में मिलकर के कुछ बातें कही थी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा भी की। यानी कि एक छोटा संगठन है। इसी तरह से आप देखिए कि एशियन एक क्षेत्रीय संगठन है, इस तरह से बहुत छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं। यहां तक कि कह लीजिए कि G20 भी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन क्षेत्रीय व्यापार संगठन भी आप इसे कह सकते हैं। तो मित्रों, ये जो रीजनल ट्रेड जो ट्रीटीज हो रही हैं, जो कुछ देश आपस में मिलकर के अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपस में जो समझौते कर रहे हैं, इसके बारे में भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं, ये किसी भी मायने में विश्व व्यापार समझौते के विरोधी नहीं है। मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये छोटे छोटे चूंकि से ग्रुप्स बन रहे हैं और आपस में ट्रेड ट्रीटीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई जो लिबरलाइजेशन का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, वो कहीं बाधित होता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर साइन करते ही वह देश पूरे के पूरे एक विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, उसके जो नियम हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो उसे मानने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर फिर से एक सिविल सर्विस की दृष्टि से एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्षेत्रीय व्यापार समझौते विश्व व्यापार समझौते के प्रतिद्वंद्वी हैं या एक दूसरे के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं, या जब आप एक विश्व व्यापार व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं तो क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, या फिर क्या ये जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं ये क्षेत्रीय हितों की रक्षा कर पाने में सफल हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उठ सकते हैं। अब देखिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होगा। अभी मैंने जो दोनों बातें कही हैं, एक तो भेदभाव रहित विश्व व्यापार प्रणाली और दूसरा क्षेत्रीय व्यापार समझौते, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। और ये टॉपिक बेसिकली अगर आप चाहें तो इसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में भी इसे लिया जा सकता है। हो सकता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेपर में उतना स्थान इसे न मिले, क्योंकि जब आर्थिक उदारीकरण पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, तो वो क्वेश्चंस अक्सर पेपर थर्ड में पूछे गए हैं, जीएस थर्ड पेपर में पूछे गए हैं, जो एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है मित्रों कि ये इकोनॉमिक्स का है या इंटरनेशनल रिलेशन का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिविल सर्विस में के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सतर्कता के साथ इसके ऊपर मैटर इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। और जैसा कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं कि बेहतर होगा कि इसके लिए वो अपने रजिस्टर के एक दो दो पेज सुरक्षित कर लें, और जब भी इनसे संबंधित उनको कुछ भी जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो उसमें नोट कर लें, तो कुछ महीनों के बाद उनके पास इन टॉपिक्स पर तथ्यों का अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। और जब तथ्यों का कलेक्शन हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर विश्लेषण करने में ज्यादा दिक्कतें होती हैं। विश्लेषण करने में दिक्कत तभी आती है जब हमारे पास तथ्य नहीं होते, और ऐसी स्थिति में हम एक ही बात को बार 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 दोहराने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे 200 शब्द तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी दो बातें भी हम ठोस रूप में कह नहीं पाते। तो इस आदत से सच पूछे तो हर स्टूडेंट को बचना चाहिए, स्पेशली सिविल सर्विस में तो बचना ही चाहिए। मित्रों, जो दूसरी न्यूज थी वो फिर पेरिस पर आतंकवादी हमले को लेकर के थी, और पेरिस पर आतंकवादी हमले को लेकर के कल भी मैंने कुछ बातें की थी और आप लोगों को कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल काफी अच्छा था, स्पेशली मैंने आपसे कहा भी था उसको पढ़ने के लिए। आज भी मैं आपको कई आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आज के में जो दो तीन जो नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, मैं कल वाली बातें दोहरा नहीं रहा हूं, जो जानने को मिलेंगी वो ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब ये रिपोर्ट से ये पता लग रहा है कि फ्रांस की जो के लगभग 2000 नागरिक आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं, 2000 लोग काफी बड़ी संख्या है। इस रूप में बड़ी संख्या है कि वहां की कुल आबादी ही 6.5 करोड़ की है, फ्रांस की आबादी लगभग 6-6.5 करोड़ की है, और उसमें लगभग 10% जो आबादी है वो मुस्लिम की है। मतलब ये कह लीजिए कि वहां लगभग 50 लाख मुस्लिम हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं और वहां वो रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 2000 फ्रेंच सिटीजन्स हैं जो खासकर ये माना जा रहा है कि आईएसआईएस के मेंबर बन गए हैं, उसमें शामिल हो गए हैं, डेफिनेटली वो एक स्लीपर सेल का काम करते हुए वहां इन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में आईएसआईएस की मदद कर रहे हैं। मित्रों, एक जो दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल कमेंट है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, हालांकि ये हिंदी में है, आप पढ़ लिख करके बड़े आराम से समझ लेंगे, फिर भी कुछ बातें मैं आपके सामने एक दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूं। ये जो सीरिया है, आपको मालूम है कि सीरिया और इराक इन दोनों के बहुत बड़े हिस्से पर आईएसआईएस का कब्जा हो चुका है, और अभी जो आईएसआईएस ने फ्रांस पर जो अटैक किया है वो इसीलिए किया है कि आप मतलब इसका कहना है कि जो वेस्टर्न देश या कोई भी देश जो सीरिया पर अटैक करेगा, जो इराक पर अटैक करेगा, उसका अंजाम इसी तरह से होगा, वो खुलेआम इस बात की धमकी दे रहे हैं। सीरिया पर अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां आईएसआईएस के कैंप्स हैं, उनके अड्डे हैं, और हवाई हमले ही अभी तक किए जा रहे हैं। एक बात आपको थोड़ी सी जाननी होगी कि सीरिया की प्रॉब्लम क्या है। सीरिया पिछले चार सालों से, लगभग चार सालों से गृह युद्ध की स्थिति में है, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं असद साहब और उनका जो विपक्ष है, असद साहब राष्ट्रपति और जो विपक्ष, इनके बीच में काफी एक तरह से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब प्रॉब्लम इसमें जो आ रही है है कि सीरिया में के लिए जितने भी वेस्ट कंट्रीज हैं वो एक मत में नहीं है। जैसे रूस जो सीरिया के अभी राष्ट्रपति असद साहब, उनका समर्थन कर रहा है, लेकिन जो दूसरे बहुत से राष्ट्र हैं, खासकर अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, वो असद के जो विरोधी गुट है उसका समर्थन कर रहे हैं, यानी विपक्षियों का समर्थन कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि दो बड़ी शक्तियां, एक हम रूस को कहें, दूसरा अमेरिका और उसके समर्थकों को कहें, अब वो दोनों पक्षों को अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इसका फायदा ये जो ISIS है ये उठा रहे हैं। ISIS ही दोस्त पहले जो है अलकायदा ग्रुप हुआ करता था, वो भी इसी तरह का संगठन था। उसे अलग होने के बाद, जब वो उससे सहमत नहीं हो सका उनके विचारों से, तो अलग हो गया, और अलग होने के बाद फिर उसने बड़ी तेजी से इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। और एक तरह से आप इस तरह की कितनी घटनाएं होती हैं आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी हैं। तो अब चूंकि सीरिया के मामले में दो बड़े देश, शक्तिशाली देश, एक दूसरे के विरोधी गुटों को मदद कर रहे हैं सीरिया में, तो ISIS को इससे बड़ी मदद मिल रही है, और सही मायने में वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पा रही है। इसलिए दैनिक भास्कर ने ये स्पेशली लिखा है कि बहुत जरूरी है कि खासकर सीरिया और इराक के मामले में ये जितने दूसरे राष्ट्र हैं, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या यूरोपीय राष्ट्र हैं, ये तो कम से कम एक हों, एक मत से अपनी कार्यवाही को अंजाम दें, ताकि ISIS उसका फायदा न उठा सके। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दैनिक भास्कर ने रेज किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मित्रों, फिर जनसत्ता का एक एडिटोरियल कमेंट है, और उसमें उन्होंने केवल यही बात लिखा है कि आज तो जो सीरिया है उसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं और उनकी इतनी परफेक्ट संचार प्रणाली है, और पूरी दुनिया के अनेक देशों में उनका जाल फैल चुका है कि उसे सच पूछे तो खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। दिन पर दिन उसकी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, और फिर इस्लाम के नाम पर युवाओं को भटकाने में उसे बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। तो इसीलिए सबसे पहले यही होना चाहिए कि ये जो देश हैं ये आपस में मिलें, और अमेरिका भी जो है इस बारे में खासकर अपने मतभेद को रूस से खत्म करे, और रूस भी अपने मतभेद को खत्म करे। ये इनके ओपिनियन है। और एक आर्टिकल उदय भास्कर जी का है, जो कि खासकर सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है। इसमें लगभग लगभग वही बातें कही गई हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो ये आर्टिकल आप देख लेंगे। मित्रों, जो तीसरी जो खबर थी वो पुरस्कारों को लेकर के थी, जो राष्ट्रपति जी ने कही, जिसकी चर्चा मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में थोड़ा सा कर चुका हूं। इसको लेकर के जो सिविल सर्विस के लिहाज से हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि कला, साहित्य और संस्कृति भी सिनॉप्सिस में आपके सिलेबस में है, तो उसको देखते हुए कि जो पुरस्कार लौटाने की जो बात होती है वो कितनी सही है, क्या सरकार या किसी भी विचारधारा का अगर आपको विरोध करना है, या साहित्य और कला प्रेमी अगर विरोध करते हैं या इंटेलेक्चुअल्स विरोध करते हैं, तो उसका आधार क्या होना चाहिए, क्या पुरस्कार लौटाने के का जो आधार उन्होंने चुना है आप इसे सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, या और कौन सा दूसरा उपाय हो सकता है, इन सब को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। निश्चित रूप से मित्रों, जो राष्ट्रपति जी ने कहा भी है, न्यूज में वो बात नहीं थी, वो ये था कि आप लोग एक लोकतांत्रिक पद्धति में अपनी असहमति व्यक्त करने के बहुत से तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए बजाय इसके कि पुरस्कार लौटाया जाए। तो ये बात मुझे काफी अपीलिंग लगती है। इस पर सेमिनार किए जा सकते थे, लोग अपनी बात रख सकते थे, आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, एक देश में बहस छिड़ सकती है कि क्या अहिष्णुता का माहौल है, नहीं है, क्यों है, क्या किया जाना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रभावी होती बजाय शायद पुरस्कार लौटाने के। ये राष्ट्रपति जी का शायद मंतव्य था। तो ये एक पॉइंट है जो एक समाधान के रूप में आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए, ताकि यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप कुछ अपनी ओर से कहने की स्थिति में हों। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आखिरी जो खबर थी छोटी सी, वो सईद जाफरी जी के निधन की खबर थी। वो बहुत बड़े एक्टर थे, खासकर शतरंज के खिलाड़ी और हिना फिल्मों से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। और इसी से आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने उनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी दिया। तो ये खबर थी, एक दूसरे तरह के एग्जामिनेशन के लिहाज से ये खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मित्रों, मैं आप सब की तरफ से, अपने प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की तरफ से, अपनी ओर से उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सईद जाफरी जी को। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात, एक छोटा सा हिस्सा दैनिक भास्कर में छपा है, उसकी चर्चा में फिर पीछे आगे चल करके कभी आप लोगों से करूंगा। तो मित्रों, AIR न्यूज से इतना ही। न्यूज पेपर्स की आज बहुत सारी क्लिपिंग्स हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ क्लिपिंग्स के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें स्पेशली एक क्लिपिंग्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो बिजनेस स्टैंडर्ड की क्लिपिंग है। इसमें आकाश प्रकाश का लिखा हुआ लेख है, इसमें इन्होंने दो तरह की बातें कह के एक तरह के पूरा लेख तैयार किया। पहला तो यह है कि जो अभी की जो सरकार है, जिसके लगभग लगभग 1.5 साल पूरे हो गए हैं, वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार बहुत कुछ नहीं कर रही है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, उसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने सेकेंड पार्ट में उत्तरार्ध में ये दिया हुआ है कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है, तो वो क्या क्या किया गया है ये दिया हुआ है। मैंने अंडरलाइन इसको कर दिया है दोस्तों, हिंदी में है, आप बड़े आराम से समझ लेंगे। खासकर इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये मदद करते हैं कि उनके लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। असफलताएं हैं वो भी हमें जानना चाहिए, और जो सफलताएं हैं वो भी हमें जाननी चाहिए, और जब हम दोनों बातों को जानते हैं तब हमारी सही मायने में एक चमकदार एनालिसिस पावर डेवलप हो पाती है। तो आप इस लिहाज से इस आर्टिकल को जरूर पढ़ेंगे। और मित्रों, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट है, खासकर सौर ऊर्जा को लेकर के, जो अभी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के। तो सौर ऊर्जा के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो सबसे बड़ा संकट है वो उसकी प्राइसिंग है, क्योंकि ऊपर यूनिट बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत महंगी ऊर्जा होती है, लेकिन अचानक उसकी कीमत में बहुत कमी आई है, तो वो कमी क्यों आई है और आगे क्या किया जा सकता है ताकि ये बहुत ही ज्यादा सस्ती हो सके, इसको लेकर के एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, हिंदी में है, आप उसे देख लेंगे और बड़े आराम से समझ लेंगे। मित्रों, अन्य दूसरे भी क्लिपिंग्स हैं जो नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं और आप उन्हें देख लेंगे। अब मैं अपने अंतिम चरण पर आता हूं, उन सभी अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इनमें से कुछ के नाम हैं सुबोध कुमार जो लखीसराय बिहार से हैं, आशुतोष श्रीवास्तव, मनोहर दत्त मिश्र पटना से, और शुभम कुमार गुप्ता दबों से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।